म्यांमार की फौज और इंतहा पसंद बुद्ध मलेशिया राय अम्मा को धोखा देने के लिए मुसलमानों की लाशें जला रही है ताकि उनके मुजरिमाना इकदाम और कत्ले आम का कोई सबूत बाकी ना बचे। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि हजारों रोहिंग्या मुसलमान जंगलात में दरख्तों की शाखों और पत्तों से बनाई गई आर्जी पनागाहों में मुकीम हैं और उन्हें फौरी तौर पर इंसान दोस्ताना इमदाद पहुंचाने की जरूरत है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बौद्ध मलेशिया के अनासिर और फौजी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में कत्लेआम करने के बाद मुसलमानों की लाशें एक जगह जमा करके उन्हें नजरआतिश कर रहे हैं। म्यांमार के मुसलमानों की सूरतहाल की निगरानी करने वाले इदारे अरकान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर क्रिस लिवा ने बताया है कि सुबह राखिन के मुस्लिम आबादी वाले इलाके राथ डाउंग में कम से कम 130 रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि तीन दिगर देहात से भी सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल किए जाने की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। क्रिस लिवा कह रहा था कि म्यांमार की फौज बौद्ध मलेशिया के साथ मिलकर मुस्लिम आबादी वाले देहात का मुहासरा करती है और आम लोगों की जानिब अंधाधुन गोलियां चलाई जाती हैं। म्यांमार की फौज और बौद्ध मलेशिया के हमलों के बाद दसियों हजार रोहिंग्या मुसलमान अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए और बांग्लादेश की जानिब फरार कर गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच को सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर से पता चलता है कि सुबह राखिन में म्यांमार की फौज और बौद्ध मलेशिया के हमले के दौरान मुतअद्दिद देहात से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। अब तक 70,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान सुबह राखिन से फरार होकर बांग्लादेश पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जबकि तकरीबन 30,000 रोहिंग्या मुसलमान जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं कोहिस्तानी इलाकों और जंगलात में फंसे हुए हैं और उन्हें खाने पीने की अशिया भी मयसर नहीं है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि हजारों रोहिंग्या मुसलमान जंगलात में दरख्तों की शाखों और पत्तों से बनाई गई आर्जी पनाहगाहों में मुकीम है और उन्हें फौरी तौर पर इंसान दोस्ताना इमदाद पहुँचाए जाने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमत म्यांमार से मुतालबा किया है कि वो गैर जानबदार मुबसरीन को फौरी तौर पर मुस्लिम आबादी वाले सूबे राखिन के मुतासर इलाकों में जाने की इजाजत दे।
नाज़रीन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी अजीम सब्जवारी, तो चलते हैं उनकी तरफ। अजीम साहब, खुश आमदेद अर्ज करती हूँ। जैसा कि आपने अभी भी खबरों में मुलाहिजा फरमाया और काफी दिनों से ये मौजूए बहस रहा है खबरों में और सारी मीडिया में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो उन पर जुल्म और तशद्दुद ढाए जा रहे हैं, तो इस बारे में इस्लामी दुनिया और आलमी बरादरी का जो काम है वो क्या है, उसका क्या फरीजा बनता है?
देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँगा कि ये मामला बहुत पुराना है, रोहिंग्या मुसलमानों का मामला कोई ताज़ा मामला नहीं है और अफसोस इस बात का है कि अगर आलमी बरादरी और इस्लामी दुनिया ने पहले ही मौके पर यानी सन 1980 में जब यह मामला पूरी शिद्दत के साथ पहली मर्तबा उठा था और म्यांमार की फौजी हुकूमत ने रोहिंग्या मुसलमानों की जो शहरियत थी उसको ये कहते हुए मनसूख कर दिया था कि ये लोग गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं, अगर उसी वक्त इस्लामी दुनिया मुत्तफिक होकर मुत्तहिद होकर और आलमी बरादरी मुत्तफिका कोई ठोस मौकफ इख्तियार करती तो शायद आज ये नौबत ना आती कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है और जिस तरह से उनकी जो है घरों को जलाकर और उसके बाद उनको पास इलाकों में जो इत्तलात आ रही हैं जो सेटेलाइट से मौसूला इत्तलात हैं उनके मुताबिक हत्ता के उनके घरों को जिंदा उन अफराद की मौजूदगी के साथ जो है वो जला दिया जाता है, फिर उसके बाद अगर जहां पर ऐसी भी इत्तलात आई हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के घरों का वो मुहासरा करते हैं महलों का और उसके बाद में फौज और बुद्ध मलेशिया के जो लोग हैं वो फायरिंग करते हैं, जो लोग मर जाते हैं फिर उनकी लाशों को जला दिया जाता है ताकि सबूत मिटा दिया जाए, तो ये इंतहाई भयानक सूरत हाल है। और इसके अलावा जो रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से जान बचाकर भाग रहे हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी आपने सुना कि उनको जो है वो तो या तो जंगलात में पना लेने पर मजबूर हैं या फिर समंदरी रास्ते से भाग कर जो है वो बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हैं, इंडोनेशिया जाने पर मजबूर हैं और रास्ते में जो समंदर में जो मुश्किलात पेश आती हैं, कश्ती डूब जाती है, कोई और मुश्किलात उनके साथ जो हैं खाने पीने की मुश्किलात, वो वाकई अजीब है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पर इस्लामी दुनिया और आलमी बरादरी की जो जिम्मेदारी है वो दो तरह की, एक तो ये कि रोहिंग्या मुसलमान जो इस वक्त जंगलात में पनाह लेने पर मजबूर हैं वो, और प्लस वो कि जो इस वक्त राखीन सूबे में जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका जो मैसूर है वहाँ पर उन तक इंसान दोस्ताना इमदाद पहुंचाने की फौरी तौर पर जरूरत है, यानी इसको यकीनी बनाया जाए। एक सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह है कि पहले म्यांमार की हुकूमत पर दबाव डाला जाए کہ وہ قتل عام کا سلسلہ بند کرے، اور روہنگیا مسلمان جو اس وقت صوبہ راخین کے اندر موجود ہیں یا راخین کے نواحی علاقوں میں پہاڑوں پر یا جنگلات میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان تک انسان دوستانہ امداد پہنچائی جائے. دوسرے یہ کہ جو لوگ سمندر میں بھٹک رہے ہیں اور انڈونیشیا یا ملائیشیا یا تھائی لینڈ یا بنگلہ دیش کی جانب جانے کی کوشش کر رہے ہیں زمینی راستے سے، ان تک بھی امداد پہنچائی جائے، ان کو سیکیور کیا جائے اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچائی جائے. یہ اس تمام کام کے لیے عالمی برادری کو جو متحد ہونے کی ضرورت ہے، نہ صرف متحد ہونے کی ضرورت ہے بلکہ جو میانمار کی اس وقت کی حکومت ہے اس پر شدید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر کے خلاف عالمی برادری پابندیاں لگاتی ہے، میانمار کے خلاف اس کو پابندیاں لگانے کا خیال نہیں آتا، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر اس کے بائیکاٹ کرنے کا خیال نہیں آتا. تو یہ یہاں پر سب سے بڑا المیہ ہے. اور دوسری جو اس کے بعد جو لانگ ٹرم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خود اس میں جو روہنگیا اقلیت ہے اس کے اصل مسئلے کو حل کیا جائے کہ یہ لوگ اس علاقے کے باسی ہیں، میانمار کی آزادی سے پہلے سے یہاں آباد ہیں، میانمار کی آزادی میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے مسلمانوں نے، اور ان کا اس سرزمین پر حق ہے، یعنی یہ سینکڑوں برس سے یہاں پر آباد ہیں، لہٰذا ان کو جو شہری حقوق ان کے سلب کیے گئے وہ بحال کرائے جائیں، ان کو ان کے گھروں کے اندر بحال کرایا جائے، ان کے آبادکاری کی جائے، ان کے جو ہے تعمیر کی جائے. تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اسلامی دنیا اور عالمی برادری کا یہی ہے کہ وہ حکومت میانمار پر دباؤ ڈال کر پہلے تو قتل عام رکوائے اور اس کو اس بات پر وادار کرے کہ وہ انسان دوستانہ امداد وہاں پہنچانے کی اجازت دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کو عالمی برادری اس کا بائیکاٹ کرے، اس کے خلاف سینکشنز عائد کرے، اور بصورت دیگر یعنی دوسرے آپشنز استعمال کیے جائیں جو ہیں، جو اس سے پہلے لوگ بوسنیا ہرزگووینا، کروشیا اور دیگر ممالک میں استعمال کر چکے ہیں. تو آخر میانمار میں استعمال کرنے میں ان کو کیا وہ مشکل پیش آتی ہے اس سلسلے میں؟ کیا میانمار کے لوگ جو روہنگیا ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ بالکل. کیا ان کے اندر جو ہے وہ دوسرے یورپی ممالک جو ہیں وہ زیادہ انسان ہیں، صرف یہی روہنگیا کے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں تو اس پر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ذمہ داریاں پوری طرح سے واضح ہیں لیکن اسلامی دنیا منتشر اور متفرق ہے، اور عالمی برادری کا کنسنسس بھی جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں ہے. ان کے جو عالمی برادری سے مراد اگر آپ لیتے ہیں امریکہ، روس اور چائنا اور یہ یورپی ممالک، تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ان کو معلوم ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میانمار کی حکومت نے کیا سلوک کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ آواز بلند نہیں ہو رہی. بہرحال ایران کے وزیر خارجہ نے ابھی انیشیٹو لیا ہے، ہم امید ہے کہ انہوں نے چار ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کی ہے اور وہ سفارتکاری کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کوئی بہتر صورتحال سامنے آئے گی اور اسلامی دنیا جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی ٹھوس موقف اختیار کرنے کے قابل ہے.